الحمد لله الذي فضل سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم على العالمين جميعا. وقامه يوم القيامة المذنبين المتلبسين الخطائين الهالكين شفيعا. فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام ملك الحي القيوم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. رواه أبو داود. صدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم. ونحن على ذلك ما قال ربنا ورسولنا لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر موجود خلیفہ حضور مفتی اعظم پاسبان مسلک اعلی حضرت حضور سراج ملت حضرت علامہ الحاج شاہ سید سراج اظہر قادری رضوی نوری مقصد لہ العالی بانی و سربراہ اعلی دارال فیضان مفتی اعظم بمبئی و مناظر اہل سنت حضرت علامہ عبدالستار صاحب حمدانی اور اسٹیج پر موجود تمام علماء اہل سنت، میرے سامنے موجود بزرگان دین و ملت، وعدہ توحید کے متوالو، سمع رسالت کے پروانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بغیر کسی تنجید کے اپنے پیارے آقا کی بارگاہ میں سب سے پہلے درود پاک نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و نبینا و سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد علی معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک و سلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، احمد رضا کا تازہ گلستہ ہے آج بھی، خورشید علم کا درخشاں ہے آج بھی. اس طرح اس نے علم کے دریا بہا دیے، علماء حق کی عقل کو حیران ہے آج بھی، اور سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اور دوسرے عقیدت مند نے کہا: اے بریلی میرا باب جنت ہے، اے بریلی میرا باب جنت ہے تو، یعنی جلوہ کہے اعلی حضرت ہے تو، بالیقین مرکزی اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے. اور لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، لاکھ جلتے رہے دشمنان رضا، کم نہ ہوں گے کبھی مدحقان رضا، کہہ رہے ہیں سبھی عاشقان رضا، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے. اور ایک شیر ان کی نظر، کیا خبر تھی، کیا خبر تھی کہ زمانے بھر میں لے کے پھرے گی، کیا خبر تھی کہ زمانے بھر میں لے کر شراب مصطفی آگ پھیلاتی پھرے گی یہ بو لہبی. حضرات محترم، وقت چونکہ بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ہمارے اسٹیج پر مسلک اعلی حضرت یعنی جماعت اہل سنت کی دو عظیم شخصیتیں آپ کے سامنے جلوہ گر، اور آپ حضرات خاص طور سے انہی کو سننے کے لیے اب بیتاب ہیں. ایک طرف ہمارے ظاہری طرف ایک ایسی شخصیت جلوہ گر ہیں جو آل نبی بھی ہیں، نائب نبی بھی ہیں، سبحان آل رسول بھی ہیں، نائب رسول بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، رہبر شریعت بھی ہیں، پاسبان مسلک اعلی حضرت بھی ہیں، جس علاقے میں حضور سراج ملت چلے گئے الحمدللہ اس علاقے سے وہابیت کا بھی صفایا ہو گیا, طلح کلیت کا بھی صفایا ہو گیا, ہری پگڑی سفید پگڑی کا بھی صفایا ہو گیا. اور دوسری طرف مناظر اہل سنت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب آپ کے جانے پہچانے ہیں, آپ کے علاقے ہیں, آپ کے علاقے کے ہیں, یہ بھی تحریر کے ذریعے بھی تقریر کے ذریعے بھی بالخصوص زیادہ تر تحریر کے ذریعے انہوں نے ماشاء اللہ بے شمار کتابیں لکھی اور ابھی بھی تصنیف کا سلسلہ جاری ہے. وہابیوں کے نا قدم کر دیا, وہابیوں کا زندہ شکن جواب دیا, آج ان کی تصنیف کا وہابیوں کے پاس جواب نہیں ہے. اور یہ بھی جس علاقے میں چلے جاتے ہیں سنیت کی کتاب برقرار ہوتی ہے اور مسلک آلات کا پرچم لہرانے لگتا ہے. پہلے یہ بھی دعوت اسلامی کی حمایت میں تھے اس وجہ سے کہ چلو دین کا سنیت کا کام کر رہے تو بہت اچھی بات ہے, اور تمام علماء اہل سنت جو اب تک ان کی تائید میں تھے وہ صرف اسی جذبے کے تحت کہ چلو وہابیوں کی تبلیغی جماعت کے مقابلے میں اگر ہماری مسلک اعلیٰ حضرت کی کوئی جماعت کوئی تحریک ان وہابی تبلیغی جماعت والوں کا جواب دیتی ہے اور دعوت و تبلیغ کا کام کرتی ہے تو چلو بہت اچھی بات ہے, ایک اس کا جواب ہو جائے گا. یہ سوچ کر اکثر علماء اہل سنت نے تائید کی تھی, بلکہ حضور طاہر شریعہ سے بھی ان لوگوں نے تائید حاصل کر لیا تھا. حضور طاہر شریعہ نے بھی اسی وجہ سے تائید کی تھی کہ چلو یہ مسئلہ کے حالات کام کریں گے, دین کا کام کریں گے. لیکن جیسے جیسے ان کے حالات بدلتے گئے اور پھر یہ مسئلہ کے اعلیٰ حضرت سے انحراف کرتے گئے کٹتے گئے تو پھر علماء اہل سنت بھی اپنی تائید واپس لیتے گئے, یہاں تک کہ حضور طاہر شریعہ نے بھی مکمل تائید واپس لے لی اور اپنی تقریر و تحریر کے ذریعے ایک مرتبہ نہیں بلکہ سینکڑوں بار حضور طاہر شریعہ نے فرما دیا ہے کہ میں کہتا ہوں اور کتنی بار کہوں بار بار میں یہ کہتا ہوں, اور آپ کو حضرت نے بھی لکھ کے بھی دے دیا ہے, یہ دعوت اسلامی اور سنی دعوت اسلامی مسلک اعلیٰ حضرت کی مبلغ نہیں. جو مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ نہ ہو کیا وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہوں گے؟ بولو بھائی. اگر وہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے والے ہوتے, مسلک اعلیٰ حضرت پر عمل کرنے والے ہوتے تو حضور طاہر شریعہ یہ کیوں فرماتے اور کیوں لکھ کر دیتے کہ یہ دونوں تحریک دعوت اسلامی ہو یا سنی دعوت اسلامی, یعنی الیاسی جماعت ہو یا شاکر کی جماعت ہو, الیاس کی تحریک ہو الیاسی تحریک یا پھر شاکری تحریک ہو, یہ دونوں مسلک اعلیٰ حضرت سے کٹ چکے ہیں اور یہ دونوں سولہ کلیت پھیلا رہے ہیں. یہ سنیت کا کام نہیں کر رہے بلکہ سنیت کے نام پر مسلک اعلیٰ حضرت کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں, خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں. میرے دوستوں بزرگوں, قرآن کریم میں رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ بار بار یہ دعا کرو, ہر نماز میں ہر رکعت میں پڑھو, اہدنا الصراط المستقیم, کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا. کون سی سیدھی راہ؟ سیدھی راہ کون ہے؟ خود رب نے بتا دیا, صراط الذین انعمت علیہم, وہ سیدھی راہ جن پر جس پر چلنے والوں پر تو نے انعام کیا. انعام پانے والی جماعت کون ہے؟ پھر آگے قرآن اس کی تفسیر کرتے ہوئے پانچویں پارے میں کہتا ہے, اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, یہ انعام پانے والی جماعت نبیین کی ہے, صدیقین کی ہے, شہداء کی ہے, صالحین کی ہے. اب معلوم یہ ہوا کہ جو نبیوں کا راستہ ہے, جو صحابہ کا راستہ ہے, جو تابعین کا راستہ ہے, جو ائمہ مجتہدین کا راستہ ہے, جو غوث و خواجہ کا راستہ ہے, جو تمام اولیاء اکرام کا راستہ ہے, یہی راستہ صراط مستقیم ہے. جو اس راستے پر چلے گا وہی صراط مستقیم پر چلے گا. اب یہ بتاؤ مجھے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کیا اس کے علاوہ ہے؟ بولو بھائی, مسلک اعلیٰ حضرت بھی تو یہی ہے. مسلک اعلیٰ حضرت یہی ہے کہ پیارے آقا کے عشق میں ڈوبے رہو, پیارے آقا کی سنتوں پر عمل کرو, شریعت پر مضبوطی سے قائم رہو, شریعت پر عمل کرو, صحابہ کے طریقے پر چلو, غوث اعظم کے دامن سے وابستہ رہو, غریب نواز کے دامن سے وابستہ رہو, اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ رہو. اب آپ کو کہنا پڑے گا اصطلاح مستقیم کی پہچان اس زمانے میں مسلک اعلیٰ حضرت, یہی مسلک اعلیٰ حضرت اس زمانے میں صراط مستقیم کی علامت ہے, صراط مستقیم کی پہچان ہے. اور یہ صراط مستقیم ہمارے لیے ہدایت کا نسخہ ہوا, ہدایت کا نسخہ ہوا, اور ہر نسخے کے ساتھ ساتھ پرہیز بھی ہوتا ہے نا. کوئی ڈاکٹر جب آپ کو کوئی دوا دیتا ہے تو کہتا ہے یہ دوا ہے تمہاری ڈائبٹیز کی یا بی پی کی, ये दवा खा के रहो, लेकिन साथ में ये शर्त है कि तुम अगर बीपी वाले हो तो नमक कम खाना, मिर्च मसाला कम खाना, सब दवा फायदा करेगी। अगर डायबिटीज वाले हो, शकर की बीमारी वाले हो, डायबिटीज की बीमारी वाले हो तो मीठी चीजों से परहेज करना। अगर परहेज नहीं करोगे तो दवा फायदा नहीं करेगी, नुस्खा फायदा नहीं करेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? रब ताला ने हिदायत के लिए हमें नुस्खा भी दिया और परहेज भी बताया। परहेज क्या है? गैर मग़दूब अलैहिम वलद्दालीन, के जिन पर अल्लाह ताला का गज़ब नाज़िल हुआ और जो भटक गए राह रास्ते, जो राह रास्ते भटक गए उनसे बचना ये परहेज है सिरात मुस्तकीम पर कायम रहने के लिए। मालूम ये हुआ कि हम इश्क मुस्तफा में अगर सरशार हैं तो ये इश्क मुस्तफा का दावा उस वक्त तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक हम दुश्मन अहमद पर शिद्दत नहीं करेंगे, जब तक हम गुस्ताख रसूल का रद्द नहीं करेंगे, जब तक हम बदअकीदों बद मजहबों पर रद्द नहीं करेंगे। ये परहेज है और ये नुस्खा है। जब तक हम इस परहेज पर अमल न करेंगे, वहाबियों से परहेज न करेंगे, सुलह कुल्लियों से परहेज न करेंगे, हिदायत वाला नुस्खा हमारे लिए मुफीद नहीं होगा। हिदायत वाला नुस्खा हमारे लिए उसी वक्त मुफीद हो सकता है जब हम इस परहेज पर भी अमल करें। अब इस आयत की तफसीर समझने के बाद अब जरा जायजा लीजिए इस दावत इलियासी का, इस अफ्तार मकार के फरेबकारियों का जायजा लीजिए। इसने पहले लोगों से कहा हम मसलके आला हजरत पर अमल करेंगे, लेकिन अब इसका अमल क्या है? अब इसका अमल ये है कि शरीयत की हराम करदा चीजों को भी बड़ी ही ढिलाई के साथ हलाल, हलाल ही नहीं बल्कि बाईस सवाब कहता है। माफ अल्लाह करते हैं इसके जाहिल मुबल्लिगीन मदनी चैनल का प्रचार यूं करते हैं कि ये नारा लगाओ कि मदनी चैनल से हमको प्यार है, और जो ये नारा लगा इसका बेड़ा पार है। माज अल्लाह है। छोटे छोटे बच्चों को इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, दो साल की चार साल के, कि ये नारे लगाओ। और ये कहते हैं कि मदनी चैनल जायज ही नहीं बल्कि बाईस सवाब है, मुस्तहसन है, और उसके चाहे वो मलबिन कहते हैं बाईस बरकत है। ये तो मैंने खुद सुना। तो इससे क्या मालूम हुआ? ये मसलके आला हजरत से भी भटके, शरीयत से भी भटक गए, शरीयत से भी अलग हो गए। अब बताओ जो शरीयत से भी कट गया हो, मसलके आला से भी हट गया हो, वो मसलके आला हजरत पर चलने वाली जमात हो सकती है? बोलो भाई आप फैसला करो। और जो जमात मसलके आला हजरत पर चलने वाली ना हो, क्या सुन्नी उसको अपने गले से लगाएगा? क्या उसकी पगड़ी को देखेगा? क्या उसकी तस्वीर को देखेगा? क्या उसके नाकानी को देखेगा? क्या उसके लंबे दस जेब वाले कुर्ते को देखेगा? क्या उसकी मिसबाक को देखेगा? न मिसबाक देखी जाएगी, न लंबा कुर्ता देखा जाएगा, न उसकी पगड़ी देखी जाएगी। सबसे पहले ये देखना है अगर ये मसले के आला हजरत का पाबंद है, आला हजरत से प्यार है, सारी शरिया से प्यार है, तो फिर ये हमारा है, वरना हमारे कदमों का ठोकर है। जैसे दूध को मक्खी से निकालकर फेंक देते हो, वैसे इसको अपने जमात से, अपने समाज से निकालकर फेंक दो अगर ये तौबा नहीं करते हैं। आला हजरत सरकार ने अपने वसाया शरीफ में अपनी औलाद के बारे में लिखा, लोगों को बताते हुए, ये लोगों अगर मेरी औलाद क्यों ना हो, अगर वो मेरे मतलब से हट जाए तो जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को निकालकर फेंक देते हो, वैसे उसको निकालकर फेंक दो, चाहे मेरी औलाद से मिला हो। मेरा मतलब मेरी किताबों से जाहिर है, मेरी औलाद से नहीं है कि नहीं? बताओ। तो जब आला हजरत सरकार ने इतनी सख्ती फरमाई, इतनी सख्ती के साथ दाखिल फरमा दिया, और ये इतना बड़ा मकदार, इतना बड़ा दज्जाल, इतना बड़ा फरेबकार, अत्तार मकदार, कि उलमा अहले सुन्नत समझाते रहे मगर अब तक मानने को तैयार नहीं, और हुजूर का शरिया के फरमान और इरशादात को भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो जो ताल शरिया का फरमान ना माने, हमें चाहिए कि हम उसको अपनी जमात से निकालें, उसका बायकॉट करें, और अगर ये तौबा कर लेते हैं तो सुभान अल्लाह हमारे भाई हैं। मगर तकैयाबाजी भी होती है, मकारी भी होती है तौबा करने में, दिखाने के लिए झुक जाए, तौबा कर ले, सदर साहब जुम्मा साहब के पास आ जाए कि हम तो सुन्नी हैं, तौबा करते हैं, लेकिन फिर अंदर अंदर अपना वही काम शुरू कर दे तो फायदा क्या? इसलिए अगर ये तौबा भी करें, ऐलान भी करें कि हम पगड़ी को उतारते हैं, दावत इलियासी की तमाम दावत इलियासी के तमाम तरीके को छोड़ देते हैं और दावत इलियासी से हम बिल्कुल अलग होकर के मतलब के आला को चलने का आरंभ करते हैं, तो भी कम से कम पूरे साल तक इनका जायजा लो कि अपने वादे पर, अपनी तौबा पर कायम है या फिर अंदर अंदर उसी तहरीक का काम कर रहे हैं। इसका जायजा लेना भी जरूरी है, इसके पीछे लोगों को लगाना भी जरूरी है, क्योंकि ये बहुत बड़े मकार हैं, बहुत बड़े कलाकार हैं। अरे जब इसका असार मकारी इतना बड़ा कलाकार है, ये बार बार झूठ बोलता है, बार बार बात बदलता है, बार बार मकारी करता है, यही वो लोग हैं। ऐसी ही जमातों के बारे में मेरे आका ने, गैब का नबी ने, आज से 1400 साल पहले फरमा दिया, मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, ए लोगो, आखिरी जमाने में जब कुर्ब कयामत का जमाना होगा, कुछ ऐसी जमातें निकलेंगी जो बहुत ज्यादा मकर करने वाले होंगे, बहुत बड़े तज्जार यानी बहुत ज्यादा मकर करने वाले होंगे, मकर फरेब से काम लेंगे और बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाले होंगे, कज्जाब होंगे। ऐसी ऐसी बातें तुम्हारे पास लेकर के आएंगे जिसको न तुमने सुना होगा, न तुम्हारे बाप दादा ने सुना होगा। अगर ऐसी जमातें तुम्हारे सामने आ जाए तो सुनो क्या करना है। मेरे आका ने फरमाया कि वही या तुम वही या हूं, तुम उनको अपने से दूर रखो और उनको अपने से दूर रखो, तुम उनसे दूर हो जाओ, उनको अपने से दूर कर दो। क्यों ना यू दिल्लू नकुम वाला या फिर नकुम, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें गुमराह कर दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो तुम्हें हिस्से में डाल दें। कुर्ब कयामत का जमाना आ गया, नई नई तहरीकें निकल रही है, नए नए फितने जन्म दे रहे हैं। आपको अपने आका की हदीस पर को सामने रखना है, मद्देनजर रखना है कि कोई भी तहरीक सामने आए, कोई भी जमात सामने आए, अब हमारे पास एक ही पैमाना है नापने का। अगर वो मसलके आला हज़रत पर चलने वाला है, उसका कौल अमल मसलके आला हज़रत मुताबिक है, तो वो हमारा है, वरना वो हमारा नहीं है। या तो वो सोला कुल्ली है, या फिर वो वहां भी नजदीक की कोई दूसरी शक्ल, उसको दूर की मछली की तरह अपने समाज से निकाल कर फेंको। बात समझ में आ रही है? अभी मेरे पास ये एक सवाल लिख के भेजा गया है कि फैजान सुन्नत के सफर नंबर 27 पर जो ख्वाब उसने बयान किया है, उस ख्वाब का बयान करना कैसा, उसके बारे में सिर्फ मुख्तसर मैं जवाब दे रहा हूं कि देखो, जब वहावियों ने ख्वाब देखा और ख्वाब को छापा, हमारे उलमा अहले सुन्नत ने उसका जबरदस्त रद्द किया और उसका आज तक रद्द करते चले आ रहे हैं कि एक तो उसके ख्वाब देखने वाले अकीदत मंद ने गलत तरीके से ख्वाब देख करके उसको अपने मौलवी अशरफ अली थानवी के मुरीद ने देखा कि मैं ख्वाब में देख रहा हूँ कि कलमा पढ़ रहा हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बार बार निकल रहा है अशरफ अली रसूलुल्लाह, माज़ अल्लाह, बोलो माज़ अल्लाह। तो अब अशरफ अली के सामने जब बयान किया थानवी के, तो उस दालिल को फौरन तौबा करवाना चाहिए था ना, कि तौबा ये तुम ये कुफ्र है, कलमा ये कुफ्र है, फौरन तौबा करो, खुद भी तौबा करता और उसको भी तौबा करवाता। मगर उस जालिम ने कहा नहीं नहीं ये तो इस बात की अलामत है, पहचान है कि तुम जिसे मोहब्बत करते हो यानी सफर थानवी से, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुतबे सुन्नत है, माजल्ला है। और उस जालिम ने उसको छाप ही दिया। तो आज तक हम उसका रद्द कर रहे हैं कि नहीं, बोलो भाई, कि ये साहब भी गलत, इसका बयान करना भी गलत, इसका सुनना भी गलत, इसको छापना भी गलत। इसी तरीके से अगर कोई अत्तारी अत्तार का मुरीद, नकली पीर का नकली मुरीद अगर ख्वाब देखा, तो जालिम अत्तार को चाहिए था कि फौरन तौबा करता और उसको बोलता खबरदार ये ख्वाब किसी को बयान न करना। किसी सामने बयान करता है कि फरिश्ते आते हैं और नबी ये ख्वाब को हुक्म देते हैं, तो फरिश्ते अर्ज करते हैं कि या रसूलल्लाह, आप अत्तार को खुदा अल्लाह ताला का सलाम पहुंचा दिए। तो इस जालिम को क्या चाहिए था कि खबरदार ऐसा ख्वाब न बयान करना न छापना। मगर उसने शौक से अपना नफ्स मोटा करके अपनी तारीफ के लिए उस ख्वाब को छाप दिया। एक ख्वाब नहीं है, उसमें बहुत सारे ख्वाब हैं। उस ख्वाबों की बारात का नाम है सरकार का पैगाम अत्तार के नाम। तो बोलो, आज हम देवबंदी का रद्द करते हैं और इस जालिम का अगर रद्द न करें तो देवबंदी जमात क्या बोलेगी, ये दरवी उलमा के यहाँ इंसाफ ही नहीं है, हमने ख्वाब देखा तो आज तक ये रद्द कर रहे हैं, और इनके मुबल्लिगों ने, इनकी जमात का नाम लेने वालों ने ख्वाब देखा तो ये उसमें भी तो नबी की तौहीन है, ये नबी जो है उम्मती को सलाम करने जाए और ये उम्मती जो है नफ्स मोटा करके इंतजार में रहे कि हाँ मेरा नबी मुझे सलाम करने जाए, इंतजार में रहे, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। इसी तरीके से सफा नंबर 27 में ये लिखा फैजान सुन्नत के कि इस अहले इज्तिमा की मफरत हो गई। तो उस ख्वाब में ये बयान किया कि अत्तार का बयान था शबे बारात में कब्रिस्तान में इसका बयान होता है। बोलो, मुर्दे सुनने के लिए जाते हैं, हम मतलब के आला के मानने वालों का बयान मैदान में होता है, जिंदों के दरमियान होता है, ये मुर्दार का बयान मुर्दों के सामने कब्रिस्तान में होता है। लांधे के कब्रिस्तान में बयान करने गया, इसके आने में ताकीर हो रही थी, एक आदमी इंतजार करके घर चला गया, बेजार होकर के सो गया, नहीं फजर की नमाज पढ़ के सोया, फजर की नमाज यानी इतनी ताकीर हुई कि ये जालिम आया ही नहीं। इतनी ताकत हो गई कि ये आदमी जब वापस घर पहुंचा तो गोया फजर की अजान का वक्त कहीं हो चुका था। फजर की नमाज पढ़ के सोया तो ख्वाब में देखा कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। सरकार फरमा रहे, अरे नादा तू लांडी के कब्रिस्तान में इलियास का बयान सुनने नहीं गया? जितने लोग वहाँ इज्तिमा में गए सबकी बख्शिश हो गई, तू रह गया। बोलो महाज अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया है ये मन रानी फकत राल फकत रानी, इसने मुझे ख्वाब में देखा तो तहकीक उसने मुझे ही देखा। और रसूल पाक की ज्यारत करने वाले के बारे में ये मुझे शफात है कि उसकी शफात मेरे ऊपर वाजिब है। वो खुश नसीब इसको आपा का की ज्यारत हुई उसके लिए आपा की शफात वाजिब, मगर उसके बारे में सरकार उसको कह रहे हैं कि तेरी शफात की तेरी बख्शिश नहीं। और इज्तिमा में सुनने इलियास का बयान जो सुनने चला गया उसकी बख्शिश हो गई। बोलो इसमें नबी की इहानत का पहलू है कि नहीं? आप फैसला करो, मैं नहीं कुछ बोलता। इहानत का पहलू है कि नहीं है? नबी नबी पाक पर इसलिए इलियास की फौके दिखाई जा रही है महाज अल्लाह रब्बिल आलमीन। लिहाजा इस तरह का ख्वाब बयान करना भी गुमराही, ऐसे ख्वाब को छापना भी गुमराही, और अगर इहानत नबी की नीयत से छापा या बयान किया तो ये कुफ्र भी है। अगर इहानत की नीयत ना हो तब भी हराम है, और शरीयत के खिलाफ ऐसा ख्वाब बयान करना कि जिससे इहानत का कोई पहलू निकलता हो। लिहाजा ऐसा ख्वाब बयान करना गुमराही है, और इहानत की नीयत से करे तो कुफ्र है। इसी तरीके से बहुत सारी बातें इसकी है ऐसी है इसकी किताबों में जो या तो गुमराही की बातें हैं या बहुत सारी बातें हैं जो मुंजी अल कुफ्र है। चुनांचे रमजान की मिसाल देते हुए ईद उल फित्र की मिसाल देते हुए सफा नंबर 1283 पर लिखा है फैजान सुन्नत में, ईद उल फित्र हम क्यों मनाते हैं तो लिखता है कि देखिए ना मिसाल देता है कि जब कोई कौम किसी जालिम हुक्मरान के चंगुल से आजादी पाती है तो हर साल उसी तारीख में उसका जश्न मनाती है। मतलब क्या, मतलब क्या निकला? रमजान और रोजेदार को के बारे में ये मिसाल देकर ईद उल फित्र का जश्न मनाने, ईद उल फित्र की खुशी मनाने उस जालिम हुक्मरान से क्या नस्बत है? अगर उसकी नस्बत ये है, उसकी मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने रमजान में माज़ अल्लाह बंदों से रोजा रखवा के जुल्म किया तो ये सरासर कुफ्र है। और अगर ये नियत है कि रमजान मुसलमानों के लिए मुसीबत का महीना है तो यो ये भी कुफ्र है अगर इहानत की नियत से बोला गया तो। बहर सूरत इस पर कुफ्र का फतवा लगता है और फतवा लगाया गया जब यही किस्सा मुफ्ती शमशाद से नजरी बदायूं शरीफ के पास किया गया, उन्होंने भी कहा इसमें बेशक कुफ्र है, तौबा सही ईमान उस पर लाजिम है। मुफ्ती अयूब खान अईबी सदर मुदरसिन व शेखुल हदीस जामिया अलिमिया मुरादाबाद, उन्होंने भी कुफ्र का फतवा दिया, मगर आज तक ये अस्तार मकदार को ये तौफीक न हुई कि न तौबा किया न तौबा नामा शायद किया न रजू किया। हाँ अब आजकल नई एडिशन में ये मिसाल निकाल दिया, गलत नहीं था तो क्यों मिसाल निकाला? मिसाल निकालना भी इस बात की दलील है तुमने इसको गलत माना, और जब गलत माना तो तौबा क्यों नहीं किया? आज तक तौबा नहीं किया, अगर तौबा किया है तो कोई अस्तार हमको दिखा दे, आज तक तौबा नामा इसका शायद नहीं हुआ। लिहाजा वो हुक्म में कुफ्र उसके ऊपर आज भी जारी है, तो बहुत सारी इसके इबादतों से कुफ्र का हुक्म हुआ, बहुत सारी इबादतों से गुमराही का हुक्म हुआ। खुलासा कलाम ये हुआ कि अत्तार बेशक गुमराही के दलदल में फंसा हुआ है और जो उसकी साइड करेगा वो भी गुमराह हो जाएगा। इसलिए मसले के आला हक के मानने वालों पर जरूरी है कि इस बातिल गुमराह जमात का रद्द भली करें, इसका बायकाट करें। अगर तौबा कर लेते हैं तो सुभान अल्लाह, वरना इसका बायकाट जरूरी है। अगर आप ऐसा न करोगे तो कल ये पूरी कौम को गुमराह कर देंगे। मेरे दोस्तों मसले के आला हजरत पर सख्ती से कायम रहना यही तुम्हारे ईमान के तहफ्फुज़ की जमानत है, और मसले के आला हजरत दीन दीन है, यही सुन्नियत है, यही यही हमारे लिए निजात वाला रास्ता इसी में है, यही सिराते मुस्तकीम है। इसलिए कहने वाले ने जो निश्चय कहा है वो बिल्कुल 100% सच होता नजर आता है कि मतलब के आना हजरत ही है दीन हक, इसकी हक से जो बाहर निकल जाएगा कल बरोज कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में चल जाएगा। परवरदिगार आलम इन जालिमों को और इन नासमझ जाहिल मुबल्लिगों को हिदायत नसीब फरमाए, समझ अता फरमाए, ताकि ये उससे रुजू करें और हक मसलक की तरफ मसलक के आलम की तरफ लौट आए। और परवरदिगार आलम की बारगाह में हम ये भी दुआ करते हैं कि मसलक के आला का बोल बाला रहे, मसलक के आला चमकता दमकता रहे। आमीन वाखर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
माशाल्लाह अब तक तो दवाई और इंजेक्शन से इलाज हो रहा था, ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाएंगे। अल्लामा अताए हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद खलीफा हुजूर अमीन मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल सत्तार हमदानी साहब कुबला मस्जिद नूरानी की ज़ात बाबरकात तशरीफ ला रही है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का नाम आया तो मुझे एक शेर याद आया, नूरी सूरत नूरी रंगत नूरी अदाएं नूरी आदत। نوری صورت، نوری رنگت، نوری ادائیں، نوری عادت، جیسے ہو جانی نور کے دھارے مفتی اعظم زندہ باد۔